अब इसके बाद आयत 267 से आगे का पूरा रुकू जो हम पढ़ेंगे, इसका टॉपिक लिखिए इन्फाक के रास्ते, यानी क्या रास्ते इस्तेमाल किए जाएं। और इसमें इंशाल्लाह बहुत प्यारी आयत आएंगी, 273 तक मुस्तकिल हम इसको पढ़कर देखते और बाद में इसमें से अमल के नुक्ते लेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो, इनमें से बुरी चीज़ों के खर्च करने का इरादा न करो जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ, अगर आंखें बंद कर लो और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह और खूबियों वाला है। शैतान तुम्हें फ़कीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फसल का वादा करता है। अल्लाह ताला वसत वाला और इल्म वाला है। अल्लाह हमें भी वसत दे, अल्लाह हमें भी इल्म दे। वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है, जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया, और नसीहत सिर्फ़ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। तुम जितना कुछ भी खर्च करो, यानी खैरात, और जो कुछ नजर मानो, इसे अल्लाह खूब जानता है, यानी दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को पता है कि तुम क्या दे रहे हो, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर तुम सदके खैरात को ज़ाहिर करो तो वो भी अच्छा है, क्यों करो, ताकि दूसरों को भी रग़बत हो। फ़र्ज़ सदका, यदि ज़कात का माल दे रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं जहाँ किसी की इज़्ज़त नफ्स पे हाथ नहीं पड़ता, या कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होता है और आप उसको देते हैं, तो दिखा कर देना चाहिए। और इस तरीके से अपने आप को रखिए कि जिससे फ़ायदा भी हो और दूसरी चीज़ें भी आपके सामने आए। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी फ़र्द को देना है तो फिर छुपा कर दीजिए, और उस वक्त क्या होगा कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होगी। और अगर तुम इसे पोशीदा पोशीदा मिस्कीनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाला है। इन्हें हिदायत पर खड़ा करना तेरे ज़िम्मे नहीं, बल्कि हिदायत तो अल्लाह ताला देता है जिसे चाहता है। और तुम जो भली चीज़ अल्लाह की राह में दोगे, इसका फ़ायदा खुद पाओगे। सुभान अल्लाह, कैसे देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जो कुछ दोगे ये किसी और को नहीं दिया जाएगा। चंद सेकंड के लिए सोचिए, ये कहीं आपको मुझे तो नहीं कहा जा रहा। जो कुछ तुम दोगे अल्लाह के रास्ते में, वो किसी और के हाथ में नहीं जाएगा, वो तो तुम्हारे ही हाथ में जाएगा। मुझे तो लगता है अल्लाह ताला ये आपको कह रहा है अलबरका के लिए। आप में कितनों को पता है कि जोहराबाद में आप लोगों का एक प्रोजेक्ट चल रहा है? हाथ खड़ा करें, चलिए नीचे कीजिए। किन को नहीं पता कि हम जोहराबाद में एक कोशिश कर रहे हैं जिधर से खैर जो फूटनी है वो कहीं बाहर नहीं जानी, वो यहाँ से शुरू होके निकलेगी और सारी दुनिया में फैलेगी। किसको नहीं पता वो हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, काफ़ी लोगों को अभी यहाँ नहीं पता। ज़ाहिर है कि आप खुशाब से रहते हैं, आप देखिएगा कि आपके इस इलाके में अल्लाह ने एक ऐसा बीज डाल दिया, पूरी दुनिया से उसकी आबजारी करने के लिए लोग बेचैन हैं अल्लाह के हुक्म से। लेकिन याद रखिए, पौधा अपनी जगह पे पलता है, दिखता है। लेकिन अभी अगली आयतों को थोड़ा सा सुनिएगा, आयत 72 से। जब भी कुछ खर्च करें तो किस नियत से, किसके लिए करना है? फरमाए, तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजामंदी की तलब के लिए ही खर्च करना चाहिए। तुम जो कुछ माल खर्च करोगे, इसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारा हक ना मारा जाएगा। सदकात के मुस्तक सिर्फ वो गुरबा हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए, यानी जो अल्लाह के दीन के कामों के सिलसिले में रोक दिए गए, कमा नहीं सकते इसीलिए, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। नादान लोग इनकी बेसवाली की वजह से इन्हें मालदार ख्याल करते हैं। आप इनके चेहरे देख कर क्याफे से इन्हें पहचान लेंगे, वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। तुम जो कुछ माल खर्च करो तो अल्लाह ताला इसका जानने वाला है। पहली बात है कि खबीस चीज़ों को अल्लाह की राह में खर्च करने का इरादा ना करें। आपको कोई बासी खाना दे, आपको अच्छा लगेगा? फटे हुए कपड़े दे, कोई जोड़ा मिले बाद में देखे तो फटा हुआ है, उधड़ा हुआ है, ख़राब है, स्टेन्स हैं, ठीक है अगर साफ़ सुथरा है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपका दिल क्या करता है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ दी जाए। तो खबीस चीज़ें कौन सी होती हैं जिनका जिक्र है इन आयात में? पहली बात यह कि खबीस चीज़ें, इससे एक तो मुराद वो चीज़ें जो गलत कमाई से हों। अल्लाह ताला इसे कबूल नहीं फरमाता, हदीस में आता है। अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज़ ही कबूल फरमाता है, सही मुस्लिम की ये रिवायत है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि हिदायत के रास्ते पर लगा देना, इन आयात में हमने ये भी सीखा, हिदायत के रास्ते पे लगा देना सिर्फ़ अल्लाह के इख्तियार में है। हम दूसरों को हिदायत की दावत दे सकते हैं, ज़बरदस्ती हिदायत उनके गले से नहीं लगा सकते। फिर अगली चीज़ जो हमने सीखी कि तुम जो भी अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे इसका पूरा अजर मिलेगा। गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ भी सिला रहमी करना बाइस अजर है। ताहम ज़कात सिर्फ मुसलमानों का हक़ है, किसी गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकती। देखिए ख़र्च करने की कैफियत, आपके सामने एक माइंड मैप है। बेहतरीन सदका क्या होता है, यानी सदक़े की बहुत सी किस्में हैं। भूखे को खाना खिला दे, नंगे को कपड़ा पहना दें, जूता नहीं तो जूता ले दे, ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए जिसको खाना खिलाया 5-6 घंटे तक के लिए पेट भर गया, वो ब्लड वो एनर्जी वो ताकत जो जिस्म में रही तकरीबन एक दिन लगा लीजिए, उससे एक दिन में उसने नेकियां की ख़त्म। और अगर अल्लाह ना करे उसके बाद उसने कोई गुनाह किए तो अब गैर शौरी तौर पर उसके गुनाहों में शामिल हो गए, क्योंकि तावन अलल बिर्री व तकवा की बात आती है। इसके बरक्स बेहतरीन सदका क्या है, नंबर एक मुहाजरीन जो हिजरत करके आए अपने घर अल्लाह के लिए छोड़ दें, दीन के तलबा जो दीन सीखने के लिए फुल टाइम अपने आप को डिवोट करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसे लोग कि जिनके पास स्किल्स थी, अक़ल थी, समझ थी, लेकिन नबी से बराह रास्त इल्म हासिल करने का शौक़ उनको वहाँ लाकर बिठा गया, असाबे सुफ़ा में शामिल हो गए। आज हम जॉब का बहाना करते हैं, उज़र पेश करते हैं, कहते हैं कैसे कुरान पढ़ने आए, जॉब है ना। मेरी हर उस सिस्टर से यही ख्वाहिश भी है, सारा साल आप जॉब करते हैं ना, सारा दिन भी कीजिए, और कुछ लोगों से मिलके पता चलता है वो वीकेंड पे भी करते हैं, घर वालों को वक्त दे ना दें लेकिन देना पड़ता है। वो सिर्फ इस महीने में ये 3 घंटे का वक्त आने जाने का लगाकर सारा 3.5 घंटे ऑफ ले लीजिए। नहीं मिलती पे ना मिले, नहीं आते पेशेंट्स कोई बात नहीं, सब फीमेल्स डॉक्टर्स जो माशाल्लाह इस इलाके के इर्द गिर्द हैं, मेरा ख्याल अगर वो सारी इधर आ जाएं तो एक कुर्सी भी खाली ना बचे। इज़ इट ट्रू? मर्दों को पेश कीजिए कि आप संभालिए इन 3 घंटों में अपने पेशेंट्स को, हम जा रहे हैं कुरान सीखने। क्योंकि जब आप कुरान सीखने के लिए जाते हैं तो वहाँ से जो खैर लेकर आते हैं वो खैर भी तो आपको इंशाल्लाह वहीं लेकर जाएगी, आपको अपने मरीज़ों का इलाज करना आसान होगा। इसी तरह सिस्टर्स जो घरों में काम करती हैं, आप शायद किसी को जानते हो, आपकी अपनी मासियाँ, देखिए बड़े गौर से सुनिए, आपके अपने घरों में मेड्स मासियाँ लड़कियाँ सफाई वालियाँ, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनको जन्नत नहीं चाहिए? उनको लेकर आइए, बंद करें घर को, जाके मिलके सफाई कर लेंगे, मत पकाइए 4-4 खाने, लेकर आइए। हमारे घरों में इतने इतने साल रहने वाले लोग भी बेचारे कई दफ़ा नमाज रोज़े के करीब नहीं आते, तो कुरान उनको लगेगा। बाज़ लोगों को गिला होता है कि ये चोरियां करती हैं, ये हैं वो है, फ़िक्र है, तो ये कुरान सीखेंगी तो चोरियां नहीं करेंगी, अल्लाह का खौफ होएगा, खशियत होगी, तो कल से अपनी मेट्स को लेकर आएँ। और ये मेरा पैगाम अपनी उन फ्रेंड्स तक पहुँचाइए जो जॉब्स की वजह से कहीं ना कहीं रुकी होती हैं, उन्हें कहिए कि चंद घंटे आपका अपना हक है। और इसके बाद देखिए सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद लोग, ये वो लोग होते हैं जो लोगों से नहीं मांगते, उनको देखकर लगता है ऐसे ही है कि वो खाते पीते हैं, लेकिन चूंकि अंदर इज्जत नफ्स होती है इसलिए वो मांगना नहीं चाहते। तो क्या पता चलता है कि ऐसा खर्च करना चाहिए। अब आप देखिए कि जो बात आपके सामने रखी जा रही है, अल्लाह के नबी सल्लम की सारी बातों को जिसको मैंने खुले दिल से शऊर से बग़ैर अपने किसी ज़ाती मेलान के मैंने जब समझा, तो मुझे दीन का जो ख़ुलासा समझ आया वो क्या है कि लोगों को तालीम व तदरीस करो, तस्कीर। कल भी आयत पढ़ी, आगे फिर 2-3 दफ़ा कुरान में आएगी ये आयत कि अल्लाह के नबी सल्लम के कामों में से क्या था, यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। तो नबी के कामों में से 4 काम थे, आयतों की तिलावत, आयतों की तालीम, तस्कीर। अब बताइए आप ज़रा सबको भूल जाएं इस वक्त, बिल्कुल आप मैं जो यहाँ से इर्द गिर्द के इलाके से आए हैं, अगर हम जौहराबाद से आए हैं तो यकीन कीजिए सिर्फ 8 मिनट लगे हैं, ओनली 8 मिनट में हम घर से आपके इस हॉल तक पहुँच गए। आप में बहुत सारी सिस्टर्स रिक्शों पे आती हैं, उनको 15 मिनट लगते होंगे, अक्सर ये साथी महफिलों में तारुफ में बताते हैं कि ये बाजी नॉर्वे से आई हैं। कल भी हमारे सारा दिन में तीन प्रोग्राम थे और तीनों जगह इन्होंने यही बात की कि भाई ये फलां जगह से आई, हमारे बुलाने पे आई। मेरा आपसे एक सवाल है कि बाहर वाला कब तक साथ चलता है? क्या आपका दिल नहीं चाहता कि आपके इस इलाके में ऐसे उस्ताद और ऐसे खूबसूरत हीरे मोती तैयार हों कि यहाँ से हम पूरी दुनिया में भेजें? कितनों का ये दिल करता है। वो नॉर्वे वाले वहाँ बैठकर खुद ही खुश हो रहे होते हैं कि हमारा नाम आ गया, तो बाद में आप खुश हो रहे हो कि खुशाब से ये टीचर गई हैं और इन्होंने जाकर इस्लामाबाद में दौरा कुरान करवाया और ये चाइना में गई और ये ऑस्ट्रेलिया में गई, बल्कि अब जो बाकी दुनिया रह गई उसमें तो इधर से लोग जाएं, दिल जाता है। इसका तरीका क्या है फिर? कोई चंतर नहीं, कोई मंतर नहीं, कोई छू नहीं, कोई फलां नहीं, इसका तरीका वही है जो नबी का था, सादा सिंपल। पहले आपकी अपनी इस्लाह, तालीम, तदरीस, तस्कीर, नफ्स पहले खुद को सुनाए, पहले इल्म लेंगे, फिर ट्रेनिंग्स लेंगे, फिर अपनी इल्म की कमियों को दूर करेंगे, और उसके बाद जहाँ जहाँ तक अल्लाह आपको मुझे ले जाएगा, हम अल्लाह के दीन का पैगाम देंगे। मैं अपने पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकती हूँ, इस सरजमीन में जहाँ अल्लाह ताला ने ये बीज डाला है, मुझे अब हिकमतें इसकी समझ आती है। और मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ कि ये आपके और मेरे बीच की बातें हैं, ये बातें बाहर से जो घर से सुन रहे हैं वो नहीं समझेंगे, वो आपके मेरे लिए कुछ ना कुछ हिस्सा डाल देंगे। दुनिया के दूसरे कोनों से आपके लिए जो भी हिस्सा आता है, लोग कहते हैं चले हम जा नहीं सकते, हम हिस्सा डाल दें, ये तो बात बाहर वालों से कहूँगी कि ये आपके लिए कॉर्नर है। अगर आप दूर रहकर इस जगह अपना हिस्सा डाल देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हिस्सा बन जाएंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इधर से जो खैर फूटेगी उसमें आपका हिस्सा डालेगा। और आप देखिए कि वो कहते हैं ना ईंट उठाओ तो पीछे से इंसान निकलता है, इतना कंजस्टेड इलाका और इतनी आबादी वाला इलाका है। आप खुद देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप जितने शौक से इधर आ रहे हैं, बाहर के मुल्कों में इतने लोग नहीं आते हैं ही नहीं, जो हैं उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम है, दूर है, मिनोरिटीज़ हैं। हमारी नॉर्वे की कुछ क्लासेस में सिर्फ चार पांच लोग बैठे होते हैं क्लास में। बिलीव मी, मैं यहाँ सारी दुनिया को ये बात बताने में कोई शर्म महसूस नहीं करती क्योंकि हम हेड काउंट नहीं करते। सर्दियों में जब माइनस का टेम्परेचर आ जाता है सब घरों में बैठ जाते हैं, इल्ला वो के बस जिनको आना है कि आके स्कूल में बैठना है, शायद अल्लाह ताला को उनकी यही अदा पसंद आ जाए। लेकिन यहाँ यहाँ जो काम होगा और हो रहा है अल्लाह के हुक्म से, आप खुद देख रहे हैं और आगे देखेंगे वक्त के साथ। कल मैं आपके इधर एक कॉलेज में थी, सुपीरियर कॉलेज में गए थे हम लोग, उन्होंने वो बच्चियों को बाहर खुली ग्राउंड में बिठाया हुआ था और वहाँ उनके साथ एक छोटा सा सेशन था। यकीन करें सिर्फ लड़कियाँ ही दिख रही थी, और बाद में जो सिस्टर थी उन्होंने बताया कि ये हमारा सिर्फ एक सेक्शन है सिर्फ, बाकी सबको छुट्टियां हो चुकी हैं। फर्स्ट ईयर का शायद कोई साइंस डिपार्टमेंट था मेरा ख्याल है, या आर्ट डिपार्टमेंट था, और मेरा ख्याल है कम से कम भी 1000-800 लड़की तो होगी वहाँ, आई डोंट नो कितनी, पूरी भरी हुई थी। इतना कुछ जहाँ आप देखिए दुनिया की तालीम हो रही है, आप ज़रा सुपीरियर कॉलेज के साथ सुपर सुपीरियर कॉलेज जिसमें कुरान का नाम डल जाए, कितनी बड़ी बात है। तो आपको ये बिल्डिंग दिखाते हैं, आप में से किसी ने देखी है कि नहीं देखी, एक छोटी सी वीडियो देखिए और दुआ कीजिए कि आज यहाँ से उठने से पहले सिर्फ हम इस हॉल में मौजूद लोग इसको हासिल कर सकें। अल्लाह ने पिछले साल के दौरे कुरान के तोहफे में ये दिया, लास्ट टाइम यही आयते जोहराबाद ग्रैंड कैसल में पढ़ाई, ख्वाबो ख्याल दिमाग दिल की किसी जगह में भी इस जगह का तसव्वुर नहीं था, ना कभी ये सोच रखी ना रही। लोग चाहिए होते हैं अल्लाह दे देता है, लेकिन उसी दौरे कुरान के दौरान जो भी कम्पेन चली, तो आप देखिए कि वो जगह आपके मेरे इंतज़ार में है। अल्लाह ताला उनको भी जजा दे जिनकी वो जगह है, हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाह रहे हैं, अभी तक कीमत पूरी नहीं दे पाए, हो जानी है, पर आज ये देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे अच्छा तो नहीं लगता ये लफ्ज़ के लोग कहते हैं ज़कात दे सकते हैं, मैं कहती हूँ दे सकते हैं, लेकिन लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून। आप ये क्यों पूछते हैं कि ज़कात दे सकते हैं? नहीं, वो तो दे ही सकते हैं, लेकिन क्या ज़कात देंगे? सिर्फ हम अपना दिल दिमाग मोहब्बतें क्यों ना पेश करें, और जबकि इसकी खैर हम खुद देखेंगे। इस जगह से बाहर से जितना भी लोग कोशिश कर लेंगे, लेकिन चलाना रखना संभालना तो हम सब ने है, तो इसको ज़रा सा देख लीजिए। इस वक्त आपकी मेरी ये कैफियत होनी चाहिए कि ये आपकी मेरी वो नेकी है। अगर हम सब जितने इस हॉल में हैं सिर्फ वाकई अपने फ़र्ज सदकात 20 साल के जमा करें, देना तो होता ही है, तोड़ तोड़ के देने की बजाय अगर हम खुद अपने घर पे लगा लें और अपनी इस जगह को, मैं तो ये दुआ दूंगी आपको कि ये इसी एक हफ्ते में हम पूरी उनको पेमेंट दे दें, और फिर अल्लाह से पे नज़रें लगा के कह रही हूँ अगला दौरे कुरान इस बिल्डिंग के अंदर करवाएंगे आप लोग। हम कब तक इन हॉल्स वालों को परेशान करेंगे बेचारे? शादी हॉल को जब क्लासरूम बनाते हैं तो मैं रिगार्ड देती हूँ, जो भी इस हॉल वाले मैनेजमेंट के हमारे साथी हैं अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जजा दे। जो साथी रोज़ सुबह, अभी आपको पता है कि हमने इधर से उठना है तो इसके फ़ौरन बाद इधर शादी है, आसान काम तो नहीं है। और मैं मुंतज़िर उस वक्त कि जब हम अपने बड़े ऑडिटोरियम के हॉल में से दौरे कुरान करेंगे, ये सारी आवाज़ें, हमारे बाहर वाले भाई बहन बेचारे परेशान रहते हैं आवाज़ में, ये मसला यही होगा, अभी फ़िलहाल यही होगा। तो ये जगह को देखकर शौक़ से मोहब्बत से अल्लाह से कहिए कि अल्लाह हमें इसका हिस्सा बना दे, और हमारी नस्लें ना सिर्फ यहाँ पूरे पाकिस्तान से बल्कि बाहर से लोग इस इदारे में इल्म हासिल करने के लिए आएं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अब ये काम अगर हो गया हमारी कब्रों की ठंडक है। कायद अजम पाकिस्तान बनवा के चले गए, आज तक उनका नाम बानिए पाकिस्तान है। आप और मैं इल्म दीन के लिए ये चीज़ें रखेंगे, इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं। मैं तो अपनी जान भी दे दूँ तो भी थोड़ी है, तन मन धन जो कुछ है अगर हम इस पे लगा दें तो हक तो यह है कि हक अदा नहीं हुआ, क्योंकि ये हम सब की खैर का ज़रिया होगा। कितने लोगों का दिल कर रहा है ऊँची आवाज़ से इंशाल्लाह के, माशाल्लाह। चले जी, अब अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हर फेल अपने लिए कर दे, और यकीन कीजिए कि इस जगह के दरो दीवार से कुरान की आवाज़ें आएंगी। एक वक्त आएगा कि हम नहीं होंगे लेकिन लोग बताएंगे, लोग जिक्र करेंगे कि ये इन लोगों की कोशिशों से हुआ है। आज भी हम जब अपने नॉर्वे के स्कूल की बात करें या अपने कहीं और भी, दो तीन हर जगह का एक बीच होता है ना जिसकी वजह से वो बात शुरू होती है, तो कभी किसी बेवा औरत को याद करते हैं, किसी बेवा औरत ने पहले दिया। इस स्कूल की एक आपको वीडियो में एक छोटी सी बालियाँ दिखेंगी, पिछले साल जब इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था लास्ट में बिल्कुल एंड पे, तो उस दिन एक छोटी सी बालियाँ किसी ने दी थी, और उनका मैसेज भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और यहाँ वालों को तो फिर इल्मुल यकीन क्या, इनुल यकीन क्या, अलहक्कुल यकीन क्या, जाकर देख लीजिए। बाहर वालों को तो यकीन करना पड़ता है हमारी बात पे, आपके तो ये डोर स्टेप पे है। सब जाइए, इसका एड्रेस लीजिए और जाकर देखिए कि ये जगह वाकई है और नहीं है। कोई डाउट कोई बात है तो आप उसको क्लियर कीजिए, और ये तो एक टोकन है, अल्लाह ने इससे बहुत बड़ी करनी है इसको इंशाल्लाह। सिर्फ यह है कि हम अल्लाह ताला इसमें हमें डाल दे, महरूम ना कर दे। अभी तक जो हमने खर्च की बातें की ये बेहतरीन थी। इल्म का सदका सबसे प्यारा सदका होता है, माल का सदका देने के लिए इंसान सच्चे दिल से जब आता है। अब एक सूरत जो है जो वर्स्ट है, बदतरीन सूरत, हम आयत नंबर 274 और उसे अगली आयात पढ़ेंगे। इसका टॉपिक लिखी है सूद हराम है। इससे खूबसूरत टॉपिक इन आयतों का मैं तो नहीं दे सकी। मुझे कोई ढीली ढाली बातें अच्छी नहीं लगती ज़्यादा, कि लिबरल बातें और ये वाली बातें। सूद हराम है, सीधी सी बात है। अब आप और मैं इसको हलाल कर नहीं सकते क्योंकि अल्लाह ने कह दिया। आइए देखते हैं, और आपने इन आयतों के तर्जमे पे बहुत गौर करना है। पहली आयत वो है जिसका ताल्लुक पिछले हिस्से से, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे दूसरी आएगी। अल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन वअलानिया फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपने मालों को रात दिन खुले छुपे खर्च करते हैं, इनके लिए इनके रब ताला के पास अजर है, और ना इन्हें कोई खौफ होगा ना गम होगा। दुआ कीजिए हम इन्हीं में हों। देखिए, खर्च करने की चार सूरतें हैं ना, या रात को कर दीजिए, यानी रात है तो रात को ही कर दें, दिन है तो दिन को कर दें, इंतज़ार ना करें रात का, क्या पता आपका मेरा नाम जिंदों की बजाय मुर्दों में लिख दिया गया हो। और अकेले में बैठे हैं तो कर दीजिए, इसका इंतज़ार ना करें कि चार लोग देखेंगे तो देंगे। और लोगों में बैठे हैं तो कर दीजिए, ये ना सोचिए कि लोगों में दिया तो रियाकारी दिखावा होगा, नहीं, क्या पता आपको इधर से उठने से पहले अल्लाह के पास जाना पड़े। मुराद क्या है कि फौरन हमें नेकी का इरादा हुआ, उसको दिल जमा दीजिए, किसी को बता दीजिए मैं ये करने वाली हूँ, मैं ये करूँगी, प्लेज कर लीजिए, कमिट कर लीजिए, अपनी नीयत इरादे से दूसरे को आगाह कर दे, क्योंकि शैतान हमारे इरादों को बदल देता है बाद दफ़ा। फिर इसी तरह से बागे सूद की आयतें सोचिए कि वो लोग जो दुनिया में ये काला धन करते हैं उनके साथ क़यामत के दिन क्या होगा। अल्लज़ीन याकुलून अर्रिबा ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुश शैतानु मिनल मस। सूद खोर ना खड़े होंगे मगर इसी तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जिससे शैतान छू कर खपती बना दे। ये इसलिए कि ये कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। जो शख्स अल्लाह ताला की नसीहत सुनकर रुक गया इसके लिए वो है जो गुज़रा, और इसका मामला अल्लाह ताला की तरफ है, और जो फिर दोबारा हराम की तरफ लौटा वो जहन्नमी है। ऐसे लोग हमेशा ही इसमें रहेंगे। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है। अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे और गुनाहगार से मोहब्बत नहीं करता। बेशक जो लोग ईमान के साथ सुन्नत के मुताबिक नेक काम करते हैं, नमाज़ों को कायम रखते हैं और ज़कात अदा करते हैं, इनका अजर इनके रब ताला के पास है। इन पर ना तो कोई खौफ होगा और ना उदासी और ना गम। यानी खर्च करना डिप्रेशन का भी इलाज है, खौफ और हुजन का भी। ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो, यानी आज तक जो हुआ सो हो गया, आप छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो, और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला से और इसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नोट कीजिए, ये धमकी तो शिर्क तक पे नहीं दी गई। इंसानी मामलात में सबसे संगीन जुर्म सूद है, जैसे अल्लाह के मामलात में सबसे संगीन सूरत शिर्क की है। हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। अगर कोई तंगी वाला हो तो इसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए, और सदका करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें इल्म है। और अगर फिर भी दिल ना करे, ये अगली आयत जो पढ़ने वाली हुई, ये तरतीब नज़ूल के एतबार से कहते हैं कि आखिरी आयतों में आती है, वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इल्लल्लाह, और उस दिन से डर जाओ जिसमें तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे और हर शख्स को इसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और इन पर जुल्म ना किया जाएगा। अल्लाह अकबर। सोचिए ज़रा, क़्यामत का दिन अल्लाह के सामने पेशी है, कभी अल्लाह ना करे अदालत के चक्कर लगाने पड़े तो कितना खौफ होता है। हाय, आज फिर पेशी है, हाय फिर वकील और जजों के साथ जाकर बात करनी पड़ेगी। क़्यामत के दिन हर बंदा अपने आमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और उनका जुल्म नहीं होगा। ये थी वो आयात जिसको कुरान पाक की सबसे स्ट्रॉन्ग आयात कहा जा सकता है। आप इसको सुनते सोचेंगे कि अल्लाह सूद के इतना ख़िलाफ़ क्यों है, तो ज़रा सा अगली स्लाइड को देखिए। एक तरफ है इस्लामी निज़ाम और दूसरी तरफ है सूदी निज़ाम। इस्लाम के निज़ाम में क्या है? हमदर्दी। ऐसे ही है ना, हमदर्दी का मामला करो। जितना हमने सदकात में पढ़ा, हमदर्दी है ना, गरीबों को दो, फ़कीरों को दो, भूखों को खिलाओ। दूसरी देखिए ताउन, एक दूसरे को अच्छी बातों पर ताउन करो, किसी को ज़रूरत पड़ गई है तो दे दो। तीसरा है एक दूसरे को सहारा देने वाला, यानी इस्लाम जो तरीका देता है सदकात का, चैरिटी का, इसकी बुनियादें तो बड़ी खूबसूरत हैं। इसके बरक्स देखिएगा, सूदी निज़ाम जुल्म, संगदिली और ख़ुदगर्ज़ी का मुरक्क है। सूद में जुल्म है क्योंकि नाहक माल खाया जाता है दूसरों का, और दूसरी बात इसमें क्या है कि संगदिली है, माल वाला और माल वाला बन जाता है, पैसे पर पैसा कमाया जाता है, और सबसे बड़ी बात ख़ुदगर्ज़ी है, सेल्फिशनेस है। चंद हदीस सुन लीजिए, दोहरा लेते हैं अपने इल्म को इस मौजू पे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले, देने वाले, तहरीर लिखने वाले और गवाहों सब पर लानत की और फरमाया वो सब गुनाह में बराबर हैं। अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम की रिवायत। तो आप देख लीजिए, जो भी कारोबार चाहे किसी बैंक में हो रहा है, किसी फॉरम में हो रहा है, जहाँ सूदी मामलात लेन देन में, तो उससे अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप नहीं ले रहे लेकिन आप लिख तो रहे हैं और आप उसके गवाह तो बन रहे हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत किताबुल बुयू की थी। एक और रिवायत सही मुस्लिम किताबुल मुसाकात वल मज़ारा। हज़रत अबू कतादा कहते हैं कि जिस शख्स को ये बात महबूब हो कि अल्लाह ताला इसे क़्यामत की सख्तियों से निजात दे, इसे चाहिए कि तंगदस्त को मोहलत दे या फिर इसको माफ़ कर दे। बाज़ लोग गरीबों को पहले कुछ माल कर्ज़ पे देते हैं, फिर उस पे सूद की किस्तें लेते हैं, फिर वो दे नहीं सकते तो सारी सारी ज़िंदगी उनकी नस्लें भी उनकी ग़ुलाम बनी रहती हैं। तो ऐसे लोगों को इस हदीस पे गौर करना है। फिर इसी तरह से मुस्नद अहमद की रिवायत है किताबुल वुयू, आपने फरमाया जिस शख्स के ज़िम्मे किसी का कर्ज़ा हो और मकरूज़ अदायगी में ताखीर करे तो कर्ज़ ख्वाह के लिए हर दिन का इवज सदका है। यानी आपने किसी को 1 लाख रुपया कर्ज़ दिया और उसने कहा 1 माह बाद दे दूँगा, हर दिन आपको 1 लाख रुपया सदका करने का अजर है। और अगर वो ना दे सके और 1 माह गुजर जाए तो उसके बाद फिर दोहरा अजर मिलने की भी रिवायात मिलती हैं। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम अपने पैसे को अपनी नेकियों का ज़रिया बनाएं ना कि गुनाहों का। किसी किस्म का ऐसा लेन देन जो ज़िंदगी में अगर आ चुका है तो अल्लाह ताला आपको मुझे बचाए, उसके आगे लिखिए आयत 282 और उससे आगे तक आयात जो हैं आयत नंबर 283, दो आयत का रुकू है जिसका टॉपिक है कर्ज़ का कानून। इस्लाम ने इंसानी मामलात को कितना खोल कर बयान किया कि सबसे बड़ी आयत, और ये जो आयत 282 है इसका एक और अलग से भी टॉपिक लिख लीजिए आयत दैन। दैन कहते हैं वो कर्ज़ जिसमें लिखत पढ़त हो, मुद्दत का तायुन हो। सबसे तवील आयत लेन देन से मुतल्लिक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज का मामला करो तो इसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि वो आपस का मामला अदल से लिखे, कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार ना करे जैसे अल्लाह ने इसे सिखाया, बस इसे भी लिख देना चाहिए। जिसके ज़िम्मे हक हो वो लिखवाए और अपने अल्लाह ताला से डरे जो इसका रब है, और हक में से कुछ घिटाए नहीं। जिस शख्स के ज़िम्मे हक है वो अगर नादान हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत न रखता हो तो इसका वली अदल के साथ लिखवाए, और अपने में से 2 मर्द गवाह रख लो। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिन्हें तुम गवाहों में पसंद कर लो, ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिला दे। और गवाहों को चाहिए कि वह जब बुलाए जाएँ तो इनकार न करें, और कर्ज़ को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है हाँ छोटा हो या बड़ा हो लिखने में काहली न करो। अल्लाह ताला के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली है, शक को शुबे से भी ज़्यादा बचाने वाली है। हाँ ये और बात है कि मामला नकद तिजारत की शक्ल में हो, जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो, तुम पर इसके ना लिखने में कोई गुनाह नहीं। ख़रीदो फरोख के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो कि ना लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए ना गवाह को, और तुम ये करो तो ये तुम्हारी खुली ना फरमानी है। अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। और अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्ज़े में रख लिया करो। हाँ आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई है वो इसे अदा कर दे, और अल्लाह ताला से डरता रहे जो इसका रब है, और गवाही को ना छुपाओ, और जो इसे छुपा ले वो गुनाहगार दिल वाला है, और जो कुछ तुम करते हो इसे अल्लाह ताला खूब जानता है। तो ये था कर्ज़ का कानून। इस्लाम ने कर्ज़ को भी एक बहुत अहम जगह दी। शरायत हैं कर्ज़ की जो हमने इस रुकू में पढ़ी। क्या पहली बात है, मुद्दत का तयन कीजिए। आप सबको कहूँगी, ख़ास तौर पे जो भाई बहनों और आपस में रिश्तेदारों को या जिनको हम जानते हैं उनको देते हैं, हम कुछ देते वक्त ये नहीं लिखते कि कब वापस मिलेगा, लिखना शर्त है। अल्लाह की तरफ से जितने वादे हैं दूसरों को कर्ज़ देने पर अजर के, उसमें शरायत पूरी करेंगे फिर मिलेगा। चाहे 1 महीने की मुद्दत रख लें, कोई बात नहीं, आपका फ़ायदा है। 1 महीने तक आपको उतना कर्ज देने का अजर है, मुद्दत गुजर जाएगी तो दुगना देंगे। लेकिन लिखिए, भाई ले तो रही हो, बताओ दोगे कब, बहन ले रही हो दोगी कब, ये बात शर्त है। दूसरी बात, उसको लिखिए, डॉक्यूमेंटेशन तहरीरनामा हो। और तीसरी शर्त क्या है, इस पर 2 मुसलमान मर्दों को या 1 मर्द और 2 औरतों को गवाह बनाना। ये औरतें 2 क्यों हैं, कि औरतों के अंदर भूल चूक है, अल्लाह ने आपका बोझ हल्का कर दिया कि ये टेबल अगर 1 मर्द उठा सकता है लेकिन तुम औरतें 2 उठा लो मिलकर, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। तो क्या पता चला कि अल्लाह सुबहान तआला आपके मेरे लिए इन चीज़ों को आसान करे। यहाँ देखिए वो माली मौजूआत जो थे पूरे हुए, जिसमें हमने सदका खैरात देखा और उसको ज़ाया करने की चीज़ें देखी, फिर हमने सूद का मामला देखा, कर्ज़ का मामला देखा, रहन का मामला देखा, और इसी तरह ये करते हुए बताया कि इस माल को खर्च करो, इस्तेमाल करो। अब यहाँ से सूरत बकरा का आखिरी रुकू है। टॉपिक इसका है दीन की असल बुनियाद, यानी इसमें अल्लाह की मलकियत, अल्लाह की बड़ाई है, پورے کو سنیے، پھر انشاءاللہ ہم آخری آیتوں کی تلاوت بھی کریں گے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے، جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اے اللہ ہمیں بھی اسی کی توفیق دے، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. یہ تھی آخری آیت جس کو عرش کا خزانہ کہیے. اس کا ٹاپک لکھ لیجئے، عرش کا خزانہ. ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مجھے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات عرش کے نیچے موجود خزانے سے عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے 1697 اور 6400. تو اللہ نے آپ کو یہاں بیٹھے وہ خزانے دلوا دیے جو کہ اللہ کے نبی کو آسمانوں پہ جا کر دکھائے گئے تھے. تلاوت سنتے ہیں اور دعا جہاں آئے گی اس پہ دعا کے طور پہ پڑھیے اور آمین کہیے، کیونکہ ہمیں بھی فانصرنا علی القوم الکافرین کی دعا کی آج ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس چیز کے اوپر جما دے.
لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
آمین ثم آمین. اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑی سورت پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور یہ علم ہم سب کے حق میں حجت بنے.